पूरा श्वास अंदर लीजिए। और छोड़िए, फिर अंदर लीजिए, ठीक है। और पूरे उत्साह के साथ बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए, अभी भी बात नहीं आई, अभी भी बहुत बहुत कम शक्ति है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अभी 10 में सिर्फ 5 नंबर मिले आपको, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं उत्साह के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए, दोबारा से दोबारा से। एक बार और जोर से। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। एक बार फिर से, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद।
Haribo, 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 God Haribo. Nitai Gaur Premanande, Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki, Shri Ram Navmi Maha Mahotsav Ki, Upasthit Bhakt Vrind Ki, Srila Prabhupad Ki, Nitai Gaur Premanande. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gura Sri Yuta Padkamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare
हरे कृष्णा तो आप सभी का स्वागत है आज का जो कार्यक्रम है आज जो है 14 तारीख को यहां पर और संपूर्ण भारतवर्ष में एक विशेष पर्व की मनाया जाएगा वो पर्व क्या है किसी को पता है रामनवमी भगवान श्री राम की जय तो उसी शुभ अवसर के उपलक्ष में आज से कंटीन्यूअसली 3 दिन तक जो है राम कथा का आयोजन किया गया है जिसमें आज प्रथम दिवस जो है श्रीमान प्रेमानंद प्रभु जी जो है हमारे बीच में प्रस्तुत हैं प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि प्रभु जी जो है हमारे मंदिर में किसी वैसे तो इनको परिचय की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी कुछ भक्त नए हैं तो उनके विषय में बताऊंगा कि प्रभु जी एनएसआईटी से पास आउट अपने जो है बीटेक किया प्रभु जी ने और प्रभु जी ने पास अपने ही प्रथम जब कॉलेज के दिवस में ही कृष्ण भावनामृत से जुड़े और कुछ ही समय के बाद इन्होंने बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति के अग्रसर हुए और जुड़ गए इस्कॉन से उनके बाद प्रभु जी ने मंदिर को ज्वाइन किया इस्कॉन में और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कार्यभार संभाला जिस प्रकार से आप सभी दर्शन करते हैं भगवान का कितने भक्त जो है इंटरनेट में दर्शन करते हैं तो प्रभु जी उस दर्शन करने में जो आपको दर्शन होते हैं उसके पीछे का हाथ किसका है प्रभु जी का है तो प्रभु जी इस सेवा में आप सबको उपलब्ध कराते हैं भगवान के अच्छे दर्शन भगवान के जितने भी लेक्चर हैं यहाँ पे तो सभी का जो है प्रभु जी यहाँ पे कार्यभार संभाल सकते हैं इसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं जैसे हरे कृष्णा संडे स्कूल्स उनका मार्गदर्शन करना सबको और बहुत तरह से जितने भी न्यूज़ हैं इस्कॉन के विषय में उसके जो है प्रचार करना प्रभु जी ही करते हैं और प्रभु जी बहुत अच्छे वक्ता हैं उसका जो है वर्णन आज आपको पता चलेगा तो प्रभु जी के मुख से हम आज रामकथा का शुरुआत सुनेंगे बालकांड के विषय में तो आइए हम मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर बोलकर प्रभु जी का स्वागत करें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखिए और जिन दर्शनार्थियों से प्रार्थना है जो दर्शन करना चाहते हैं वो बाहर से लाइन लगा के उस रेलिंग के आगे से आ सकते हैं प्रवचन के बाद प्रसादम की व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए, कृपया करके फर्स्ट फ्लोर पे प्रसादम लेके जाइए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो अभी रामनवमी का उपलक्ष्य आने वाला है, तो इसी संदर्भ में सुबह और शाम में रामकथा हो रही है। तो आज पहला दिवस है और हमने इस प्रकार से डिवाइड किया आगे आने वाले 3 दिनों में कि आज बालकांड पे चर्चा करेंगे, कल और परसों अयोध्या कांड पे चर्चा करेंगे। रामायण किन्होंने लिखी? वाल्मीकि जी ने। और रामायण में कितने श्लोक हैं? भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। श्रीमद् भागवतम में और रामायण में 24,000 है ना। और रामायण में अलग अलग कांड में बटी हुई है, कितने भाग हैं रामायण के? हाँ, कोई कह रहे हैं 6, कोई कह रहे हैं 7, कितने कांड हैं? रामायण में वैसे 7 कांड है, परंतु बोला जाता है 6 कांड। क्यों? हाँ, सुंदर कांड भी पार्ट है उसका। सबसे पहले है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद शिष्यंध्या कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड है ना। परंतु जो आखिरी कांड है वो है उत्तर कांड। और उत्तर कांड में ही भगवान राम को राजा के रूप में बिठाया जाता है, और उसी कांड में वो लीला आती है जब वो माता सीता का परित्याग करते हैं। तो ये जो घटना है वो इतनी दर्दनाक है भक्तों के लिए, तो इसको वो कांड में नहीं गिनते। कहते अयोध्या रामायण के 6 कांड है और इसके साथ प्लस एक एडिशनल उत्तर कांड, इस तरह से बोलते हैं। और आज भी अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे या देश भारत के अलग अलग प्रांतों में जाएंगे तो रामायण पे अलग अलग पाठ किए जाते हैं, और सुंदर कांड तो बहुत से लोग करते हैं घर पे। तो प्रायः रामायण में से 2 कांडों पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है, पहला है बाल कांड और दूसरा है सुंदर कांड। बाल कांड क्यों? क्योंकि बाल कांड में बहुत सी मधुर लीलाएं हैं भगवान रामचंद्र की। भगवान राम और माता सीता का इसी कांड में विवाह हुआ, इसी कांड में किस प्रकार से भगवान राम का प्राकट्य हुआ शुरुआत में, किस प्रकार से वो अलग अलग जगह जाते हैं विश्वामित्र मुनि के द्वारा, और वहां पे अलग 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 जगहों के इतिहास सुनते हैं विश्वामित्र मुनि से, वहीं से उन्हें मंत्र प्राप्त होते हैं अलग अलग। तो आज हम चर्चा करेंगे बाल कांड से, और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि इस भौतिक संसार में जितने लोग हैं उनके पास अलग अलग विषय हैं चर्चा करने के लिए। विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में हैं, बताते हैं उनके पास नाना प्रकार के विषय हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हो, फिलोसफिकल फील्ड से हो, अलग अलग प्रकार के विषयों पर वो चर्चा करते हैं। परंतु वो सारे जो विषय हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? वो होती है द्वेष से। जनस्य मोहयम अहम ममेति, कि शरीर को खुद मानना और शरीर से जो विस्तार हुए हैं उनको अपना मानना। और इसलिए ऐसे लोगों को बताया गया है गृहमेदी, और एक गृहमेदी दूसरे गृहमेदी के साथ ईर्ष्या रखता है, उनकी बहुत कम बनती है। क्यों? कि उसका मूल कारण है ईर्ष्या। परंतु इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे वो उनका जो विषय है वो पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है, वो हर एक के लिए मंगलकारी है। तो इसलिए वो उनको धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जो भगवान के विषय में जितनी चर्चाएं होती हैं परम सत्य से संबंधित, उनका क्या लाभ होता है? वो परम दृष्टा निवर्तित है, परम जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का उसको वो प्राप्त कराता है। और बताया गया है कि इस संसार में जितनी समस्याएं हैं उनका एक सिंपल सॉल्यूशन बताया गया है, वो क्या है? इस संसार की सारी समस्याओं का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? कि संसार को छोड़ के बाहर वापस आध्यात्मिक जगत चले जाइए। जेल में आप कितने ही अन्य प्रकार का अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, जेल में खाना ठीक नहीं बनता, बहुत गंदगी है और लोगों से नहीं बनती, वो किस लिए सारी समस्या है? क्योंकि आप जेल में हो, चाहे फर्स्ट क्लास जेल में भी क्यों ना हो, परंतु सबसे अच्छा समाधान क्या है? जेल से बाहर जाना। तो जेल से बाहर जाने का यानी इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत जाने का जो सबसे सुगम मार्ग है वो क्या है? भक्ति का मार्ग। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? श्रवणम से। तो इसलिए बताया गया है कि भगवान के विषय में, परम सत्य के विषय में जो इतनी कथाएं होती हैं, जो हम उनको सुनते हैं या गाते हैं, तो वो तरीका है इस संसार को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाने का। और बताते हैं भगवान की कथाएं भगवान से अभिन्न है। और श्रील प्रभुपाद भागवतम के श्लोक एक तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुनने का मतलब है भगवान की लीलाओं में एक परिकर बनना। टू हियर द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इज अल्टीमेटली टू बिकम वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। तो इसी उपलक्ष्य में इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार संकलन किया है कि प्रतिदिन सुबह और शाम या तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, परम सत्य से संबंधित जितनी कथाएं हैं उन पर चर्चा की जाती है। और विशेषकर जैसे अभी रामनवमी आने वाला है, भगवान राम का प्राकट्य, तो इस संदर्भ में भगवान जब नौवा स्कंद में श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कह रहे हैं कि भगवान राम की लीलाएं, ये जो वो श्लोक बोल रहे हैं 5000 वर्ष पहले बोल रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि कितनी कितनी बार आप ये लाखों लाखों साल से चलती हुई आ रही हैं, और आप इसके बारे में कितने विषय में आप इनके विषय में आप जानते हो, और इसलिए मैं संक्षिप्त में इनका वर्णन करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को क्या कह रहे हैं कि संक्षिप्त में इनका वर्णन करेंगे, यानी उस समय भी राम कथा को वो इतनी बार सुन चुके थे, इतनी प्रसिद्ध थी। और आज के समय में भी हम देखते हैं कि त्रेता काल से, त्रेता युग से अब तक भगवान राम की कथाओं का प्रचार होता जा रहा है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताय की। तो इस उपलक्ष्य में हम देखते हैं, क्योंकि रामायण अपने आप में इसमें से अनंत शिक्षाएं ले सकते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उन भगवान के हर अवतार के पीछे कुछ ना कुछ विशेष उद्देश्य होता है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका प्राकट्य का क्या उद्देश्य था? वो अपना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप में, जो उनका बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उसमें वो प्रकट हो रहे थे। और जब यहाँ पे भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो इनके आने का क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप में भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कॉमन प्रिंसिपल है, जितने भी भगवान के अवतार होते हैं अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और जितने असुर हैं उनका नाश करने के लिए वो प्रकट होते हैं। परंतु यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक मनुष्य को उनका आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए ये दर्शाने के लिए। और भगवान की जब भी प्रकट होते हैं उनका एक और उद्देश्य होता है कि वो अपनी अलग अलग लीलाओं से सभी को आकर्षित करना चाहते हैं और उनको निमंत्रण देना चाहते हैं अपने धाम में, कि आपकी असली जगह ये नहीं है, आपको असली जगह मेरे धाम में है, वहां पर आइए। तो उनके तो आने वाले अभी इस कथा में कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और कुछ भगवान राम की लीलाओं पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कुछ भी लीला पे चर्चा करें, मैं भगवान राम का गुणगान करना चाहता था और विशेषकर उनके गुणों का। और ये हिजुलनेस भक्ति विकास महाराज के द्वारा ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड रामायण है, रामायण लिखा गया वाल्मीकि मुनि जी के द्वारा। तो इसमें से मैं डायरेक्टली पढ़ना प्रेफर करूँगा, जिसमें इसकी शुरुआत ही होती है जब वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि और वाल्मीकि मुनि जी में वार्तालाप होता है। और जब दो ऐसे महान भक्त मिलेंगे तो जो वार्तालाप होगा उसका क्या विषय होगा? उसका एक ही विषय होगा, भक्ति, भगवान भक्ति या भक्त, और कोई विषय नहीं होता। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं इस संसार में भी देखते हैं, अगर दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स मिल रहे हैं तो कोई ऐसे फालतू चर्चा नहीं करेंगे। और यहां पर तो स्वयं जो सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार में टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, नारद मुनि और वाल्मीकि जी, तो जब नारद मुनि वहां पर आए, उनके वहां के शिष्यों ने बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर। तो वैष्णव सदाचार में एक चीज ये भी बताया जाता है, जब भी वरिष्ठ वैष्णवों के दर्शन प्राप्त हो तो एक किसी को कैसे फील होना चाहिए, बहुत ही उसको खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे वाल्मीकि मुनि और सारे जो उनके शिष्य उठ के उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको उनका सत्कार किया, उनको आसन दिया और उनकी सेवा करने के उपरांत उनसे वाल्मीकि मुनि जी ने प्रश्न पूछे। वो क्या प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा कि कृपया करके मुझे बताइए इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी ऐश्वर्यों में पूर्ण है, जो अकम्प्लिश्ड है, जो बहुत ज्ञानी है, शक्तिशाली है, समदर्शी है, सत्यवादी है, कृतज्ञ है, जिसके चरित्र में एक भी दाग नहीं है, जो वास्तविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा के हित के लिए कार्य कर रहा है, जो सबसे ज्यादा क्लेवर है, चलाक तो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो जाता है, बड़े पॉजिटिव सेंस में है, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम, जो क्रोध से या दोगलेपन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, अगर वो थोड़ा सा भी उनको क्रोध आए तो सभी के हृदय में जो वो भय, सभी उनके जो गंभीर मुद्रा है उसको देख के भयभीत हो जाएं, जिनके पास इतना बल है कि वो तीनों लोकों में जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको आश्रय देने में सबसे आगे हैं, और जिन पे लक्ष्मी जी ने साक्षात अपनी सारी के सारा आशीर्वाद दिया हुआ है। तो ये प्रश्न सुन के नारद मुनि ने उनको उत्तर दिया और उन्होंने भगवान राम का गुणगान करना प्रारंभ किया, और सबसे पहले उन्होंने भगवान राम के रूप का गुणगान किया। भगवान राम के रूप के विषय में अगर आपको बोला जाए कि भगवान राम के रूप का विवरण करना है तो उसमें हम क्या क्या बताएंगे, अक्सर हम बताएंगे कि भगवान राम बहुत ही सुंदर थे, सबको आकर्षित कर लेते थे, इसके अलावा नहीं। तो यहां उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी भगवान राम के रूप की। भगवान राम की जो भुजाएं हैं वो इतनी लंबी थी कि उनकी घुटनों तक आती थी, उनका जो गला है उस पर तीन लाइंस थी, उनका जो शोल्डर्स हैं बहुत ही ऊंचे और बहुत ही चौड़े थे, उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, उनके जो सिर की रचना है बहुत ही सुंदर वेल शेप्ड उनका हेड था, उनका जो माथा है बहुत ही ग्रेसफुल था, और उनके जो जबड़ा है बहुत ही शक्तिशाली था, और उनके जो कॉलर बोन्स का हिंदी में क्या कहेंगे, कॉलर बोन समझते हैं, हाँ ये वाली जो बोन होती पसली है, इसके बारे में लिखा है कि बहुत ही गहरी डीपली एम्बेडेड कॉलर बोन्स, उनकी नेत्र बहुत विशाल थे, और आगे लिखा है उनके जितने भी शरीर के अंग थे उनकी जो रचना है बहुत ही, दे आर वेरी वेल फॉर्म्ड और बहुत ही सिमेट्रिकल थे, उनका जो वर्ण है जैसे महाप्रभु कौन से वर्ण के हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विसे नमः, नामने गौर त्विसे नमः, उनका गौर वर्ण है पिघले हुए सोने की तरह। कृष्ण का कौन सा वर्ण है, श्याम वर्ण, और ऐसे भगवान राम का कौन सा वर्ण है, नीला, हाँ और कलर्स क्या क्या होते हैं सभी बोलिए, हाँ ग्रीन, कैसा ग्रीन, डार्क ग्रीनिश ब्लू मिक्सचर, डार्क ग्रीनिश ब्लू, कोई एक आप ऐसे व्यक्ति को देखे जिनके शरीर का रंग डार्क ग्रीनिश ब्लू और ये सब हो, और उनके शरीर से बहुत ही कांति निकलती थी, उनकी जो बुद्धि थी उस सबसे अनफैथमेबल, कोई उनकी बुद्धि कितनी मात्रा में इसका गणना नहीं कर सकता था। His manners are grave मतलब बहुत गंभीर, और उनकी जो वाणी है स्पीच वो कैसी थी, superb in tone and eloquence मतलब बिल्कुल precise, जो बहुत ही कम शब्दों में बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत ही एक विशाल दर्शन प्रस्तुत करें। कई लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं परंतु एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके नहीं बताते, बस झाड़ी के चारों ओर बस घूमने वाला। परंतु भगवान राम की स्पीच सबसे ज्यादा एलिक्वेंट और सुपर्ब थे। और फिर आगे उनके रूप का गुणगान करने के बाद वो उनके गुणों का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं उनका चरित्र सबसे शुद्ध है, वो सभी धार्मिक सिद्धांतों के असली पालक हैं, आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हैं, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, उन पे ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका है, साथ ही साथ वो सब कुछ संहार करने वाले भी हैं, और जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं उनके एकमात्र शरण हैं। वेदों के ज्ञाता हैं, वेद के ज्ञाता हैं, सभी वेपन्स अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जितने एग्जिस्ट करते हैं उनको चलाने में निपुण हैं। उनका जो दृढ़ता है वो हिलाई नहीं जा सकती, और उनकी जो स्मरण शक्ति है वो अनंत है, यहां तक कि उनका जो लर्निंग है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो बुद्धिमान है, करुणामय है, और सबसे ज्यादा उन्होंने किसका गुणगान किया, युद्ध में उनके हीरोइक जो क्वालिटी है उसका। और वो समदर्शी हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, और साथ ही साथ उनकी गंभीरता की तुलना उन्होंने किनसे की, एक महासागर से। एक महासागर कितना गहरा है पता लगा सकते हैं, इसी प्रकार से वो उतने गंभीर। साथ ही साथ उसकी उनकी तुलना की हिमालय पर्वत से, फोर्टिट्यूड में, शक्ति में वो भगवान विष्णु के समान है, सौंदर्य में वो चंद्रमा के समान है, फोर बियरेंस मतलब सहन शक्ति में वो पृथ्वी के समान है, क्रोध में जो जब इस सृष्टि का संहार होता है उस समय जो अग्नि जलती है उसके समान, धन में वो कुबेर के समान, भक्ति में वो धर्म के समान, और वही ही इज द लॉर्ड ऑफ राइचियसनेस। और उसके बाद नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को उनकी लीलाओं का वर्णन किया, और उन्होंने फिर बताया कि भगवान राम का जो राज्य था उसका विवरण दिया। भगवान राम जो राम राज्य है उसमें क्या, उसकी क्या विशेषता थी, सुनिए। जब भगवान राम रूल कर रहे थे, जो उनकी प्रजा थी, किसी भी प्रकार का किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से किसी के मन में एक प्रकार, एक विचार का भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, कोई चिंता नहीं होती थी। प्रत्येक जीव, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव भगवान राम के जब राज्य में खुश था और फल फूल रहा था। किसी को भी चोरी का कोई भय नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और किसी को भी भूख नहीं सताती थी। जितने भी गांव और जितने भी शहर थे वो अलग अलग अन्न से पूर्ण थे, अन्न से, फल से, सब्जियों से, और दूध से बने हर प्रोडक्ट से, दूध से जितनी भी आइटम्स बनती हैं। और बताते हैं उस समय उनको उतनी ही प्रसन्नता महसूस होती थी जितनी कि सतयुग में लोगों को होती थी। किसी भी प्रकार का प्राकृतिक कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई अर्थक्वेक नहीं, कोई फेमिन नहीं, किस कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं, किसी भी प्रकार की ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड या ज्यादा बारिश या कम बारिश, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नेचर से नहीं थी। कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी, सभी की सभी स्त्रियां चेष्ट थी। भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार कितने सालों तक राज्य किया, 11,000। तो ये उन्होंने भगवान राम का गुणगान किया। और इसके बाद जो जब नारद मुनि चले गए, वाल्मीकि जी जाते हैं अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमस नदी पे, उनके जो शिष्य थे भारद्वाज उनके साथ। और जब वो वहां पर बैठकर नारद मुनि की बातों पर ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक बगुला और बगुली, पेयर ऑफ क्रेन्स, वो आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, और इतने में ही एक निषाद जाति के शिकारी ने तीर लिया, और जब वो बिल्कुल सेक्सुअल यूनियन कर रहे थे उसी समय उन्होंने जो मादा पक्षी था उसको मार दिया, और ये देखकर वहीं पे सारा खून खून हुआ, और ये देखकर जो पुरुष वो पक्षी था और फिर मादा जो पक्षी थे बहुत जोर जोर से क्रंदन करने लग गए। और जब वाल्मीकि जी ने ये इस पूरे इंसिडेंट को देखा तो उनके हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उस शिकारी को एक शाप दिया। क्या शाप दिया? उन्होंने कहा कि जिसने भी इस पक्षी की हत्या की है उसकी वजह से तुम्हें कभी भी अनंत चीर काल तक मन की शांति प्राप्त ना हो। और जैसे ही उन्होंने ये शाप दिया तुरंत उनको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने क्रोध पे संयम नहीं किया, और क्योंकि वो जानते थे कि प्रत्येक जीव कैसे आशय रूप से प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध है और उसी के प्रकार कार्य कर रहा है। परंतु साथ ही साथ वो बहुत हैरान हुए कि उनके मुंह से जो शाप था एक कविता के रूप में आया, और कविता लिखने वाले का एक गुण है, कोई भी असली काव्य तब तक नहीं लिख सकता जब तक उसके हृदय में करुणा ना हो। तो शोक से एक श्लोक उत्पन्न हुआ। तो फिर उन्होंने नदी में स्नान करने के बाद अपने आश्रम में गए, और वो फिर बार बार इसी घटना पर स्मरण कर रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा, वहां पर हंस पे ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं, और वो इतने खुश होते हैं, उनको पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, ये मेरी ही इच्छा से तुम्हें प्रेरणा देने के लिए ये पूरी की घटना बनाई गई थी, तुम्हें अब भगवान राम के जितनी लीलाएं हैं उनका संकलन करना है रामायण के रूप में, और उन्होंने उनको पूरा आशीर्वाद दिया। और अपने इस आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने उनको निर्देश दिया कि आप इसको आगे अपने शिष्यों को सिखाइएगा, जिससे वो पूरी पृथ्वी पे भगवान राम के चरित्र का गुणगान किया जा सके। तो यहां से फिर वाल्मीकि जी ने भगवान राम के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान राम का प्राकट्य हुआ। तो अभी हम चलते हैं पंजाबी बाग से अयोध्या में, है ना। अयोध्या उस समय थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ का नाम दशरथ क्यों था बताते हैं, उनके पराक्रम, उनके अंदर इतनी शक्ति थी, वो लड़ने में इतने निपुण थे कि देवता गण भी, इंद्र तक उनके पास आते थे सहायता मांगने के लिए, असुरों के साथ युद्ध करने के लिए, और उनके अंदर इतना पराक्रम था कि वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकते थे। जब वो युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था कि 10 दिशाओं में 10 रथ और 10 लोग एक साथ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम था दशरथ। और इतना उनका पराक्रम था तो उन्होंने, उनका सबसे पहला विवाह हुआ कौशल्या के साथ, और कौशल्या के साथ उनको एक पुत्री हुई, उन पुत्री का नाम था शांति, परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ, और वो उनकी आयु बढ़ती जा रही थी और वो बहुत चिंतित थे कि अगर मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो कैसे, जो उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, प्रैक्टिकली पूरा का पूरा भारतवर्ष, उस समय का भारतवर्ष, मतलब एग्जैक्टली बोले तो आज के समय जो तिब्बत, नॉर्थ ऑफ तिब्बत, वहां से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो पूरा का पूरा वो रीजन है वो उनके साम्राज्य में आता था। तो उन्होंने फिर कौशल्या के बाद किनसे विवाह किया, दूसरी उनकी पत्नी का नाम क्या था, सुमित्रा, और उनसे कितने पुत्र या पुत्री हुई, कौशल्या से कम एक पुत्री हुई, इनके साथ कोई ना कोई पुत्र ना पुत्री, और वह बुढ़ापे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तो तो उन्होंने प्रैक्टिकली पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। और उस समय जितने बाकी छोटे मोटे राजा थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब महाराज दशरथ की मृत्यु हो और हम इनके जितना साम्राज्य है उसको उस पर हम अपना कब्जा लें। देखिए उस अगर आप श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उस समय राजा का पुत्र होना उस इस विषय में वो बहुत चिंतित रहते थे। ऐसा क्यों? कभी कार जब भक्त लोग ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं अक्सर पूछा अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं अगर सारे के सारे आपकी तरह मंदिर ज्वाइन कर गए कैसे संसार चलेगा। परंतु उस समय उनका जो विजन होता था वो सिर्फ अपना नहीं होता था, पूरे का पूरा साम्राज्य होता। क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब जो लोगों को शत शत मतलब शत से त्रायते, शत यानी टू बिकम हर्ट, जो लोगों की रक्षा करता था। दूसरा उनका सबसे प्रमुख कार्य होता था धर्म के सिद्धांत का ठीक रूप से पालन होता रहे, तो इसलिए वो बहुत चिंतित होते थे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने उनको सलाह दी कि आप कैकई एक राज्य है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, आप वहां पर जाइए और उनकी जो पुत्री है कैकई उनसे विवाह कीजिए। तो दशरथ महाराज वहां पर गए और उन साम्राज्य का नाम कैकई था और वहां के राजा का नाम भी कैकई था। तो परंतु कैकई ने उनसे पूछा अगर मैं आपको अपनी पुत्री दूं और अगर आपके पहले की जो दो पत्नी हैं उनके पुत्र हो जाते हैं तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो मेरे उनसे पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई और ना होगी। दूसरा उन्होंने कहा अगर कोई पुत्र की उत्पत्ति होती भी है परंतु जो कैकई का पुत्र होगा वही पूरा साम्राज्य करेगा, उसी का पूरा साम्राज्य होगा। तो इस समय कहते थे इसको कहते हैं कन्या शुल्क। जब भी कोई क्षत्रिय एक स्त्री से विवाह करता था तो उनके पिता पूछते थे कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका कितना साम्राज्य है जिसको पे वो उसका भोग करेगी। तो उन्होंने कहा कि यही बात आप मुझे लिख के दो। परंतु ये बात एक रहस्य थी जो सिर्फ तीन लोगों को पता थी, एक महाराज दशरथ, दूसरे वशिष्ठ मुनि और तीसरे कैकई जो उनके पिता थे। परंतु उनके पिता अपनी पुत्री से इतने आसक्त थे कि विवाह के समय उन्होंने ये बात उनको बता दी कि अगर आने वाले समय में अगर तुम्हारा पुत्र जो होगा वही असली अधिकारी होगा पूरे साम्राज्य का, ये बात उन्होंने लिख के दी थी। और उन्होंने उनका विवाह करने के बाद आए, परंतु आने के बाद भी कोई विवाह नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ। तब जब उन्होंने देखा कि बाकी राजा अलग अलग छोटे छोटे यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने उनको सलाह दी कि आप एक अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ क्यों? कि जब आप अश्वमेध यज्ञ जब आपका पूर्ण होगा तो अलग अलग देवी देवता आएंगे उनका उनसे आपका आपने जो उनको आहुति दी है वो स्वीकार करने के लिए। तो दो प्रकार के यज्ञ होते थे कि एक जिसमें आप अग्नि में आहुति दे रहे हैं और वो डायरेक्ट डेमीगॉड्स के पास जा रहे हैं, और एक दूसरे प्रकार का यज्ञ होता था जिसमें देवी देवता खुद आते थे, आकाश में खड़े होते थे और जैसे ही अग्नि में डाला जाता था उनके हाथ में पूरा वो भोग आता था और उसको स्वीकार करते थे। तो जो ये यज्ञ है ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। और उन्होंने कहा जब सारे देव जब सारे देवता संतुष्ट हो जाएं उस समय आप उनसे वर मांगिएगा कि आपका राज्य इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं अलग अलग प्रकार के युद्ध में, तो आप भी मुझे वर दीजिए मेरा जो साम्राज्य है वो सुरक्षित रहे। तो उनको ये बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। और अश्वमेध यज्ञ बहुत विशेष प्रकार का यज्ञ होता है, उसमें एक अश्व उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे उनका कान होना चाहिए, कैसे उसका मुंह होना चाहिए, कैसे उसकी पूंछ होनी चाहिए, कैसे उसके पैर होने चाहिए, इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे एक यश अश्व को ढूंढा जाता था, उस पर सोने का एक नोट लगाया जाता था कि ये राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप उनको राजा स्वीकार करते हैं तो यज्ञ के लिए दान दीजिए, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो जहां जहां घोड़ा जाता था उससे 100 मीटर दूर पूरी की पूरी सेना चलती थी, और अगर कोई नहीं मानता था तो आपस में युद्ध होता था, और अगर राजा का युद्ध सेना पराजित हो जाती थी तो और सेना आती थी। तो इस प्रकार से वो घोड़ा जा रहा था अलग अलग जगह। परंतु तभी जो उनके एक मंत्री हैं सुमंत्र, उनको एक बात याद आई कि जब महाराज दशरथ ब्रह्मचारी थे, राजा नहीं बने थे, तब सनत कुमार उनके पिता आज उनकी सभा में आए थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में महाराज दशरथ का यश चारों दिशाओं में फैलेगा और वो एक पुत्र यष्टि यज्ञ करेंगे पुत्र संतान की प्राप्ति करने के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और उन्होंने ये घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि उसमें से जो यज्ञ पुरुष होंगे वो उनको खीर देंगे और उस खीर से उनका पुत्र उत्पन्न होंगे। तो ये सुनकर, क्योंकि सुमंत्र उस समय उनके पिता के समय थे, बहुत उनकी आयु हो चुकी थी, तो अचानक ये याद आया, उन्होंने राजा को बताया। तो जब राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वशिष्ठ मुनि ने भी इसको कंफर्म किया, हाँ मुझे भी याद है सनत कुमार आए थे और उन्होंने इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। तो उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, मैंने अपने राज्य का 60% जो धन है वो इस यज्ञ में लगा दिया है, क्योंकि त्रेता नाम यजतो मुखे, मुखे मतलब यज्ञ। त्रेता युग में चाहे भौतिक इच्छा आध्यात्मिक इच्छा हो, उसका प्रोसेस क्या था, यज्ञ। और क्या 60% मैंने ट्रेजरी इस अश्वमेध यज्ञ के लिए लगा दिया है, तो अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ है इसमें इतना खर्चा नहीं है, परंतु इसके लिए एक विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए। जो समस्या है वो क्या, इसमें जो भी प्रीस्ट होगा, जो पुरोहित होगा, वो ऐसा पुरोहित होना चाहिए जिसने विवाह तक किसी भी स्त्री के दर्शन ना किए हो, किसी भी स्त्री को ना देखा हो। किसी भी स्त्री को देखा ना हो ये तो दूर की बात, स्त्री नाम का कोई प्राणी है, स्त्री होती है, इसके बारे में इसका भी ज्ञान ना हो विवाह। तो उन्होंने कहा इस पूरी सृष्टि में कहां पे ऐसा व्यक्ति मिलेगा, कम से कम जो भी जन्मा होगा अपनी माता को तो जानता ही होगा, उसको तो देखा ही होगा। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से ही पूछा, तो वशिष्ठ मुनि निश्चित रूप से कोई साधारण मुनि नहीं है, सभी सब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने फिर एक और बताया कि ये व्यक्ति का नाम है ऋष्यरंग, और ये कहां कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने उनका इतिहास बताया कि कैसे जब कश्यप मुनि जो प्रजापति हैं एक बार सूर्य रोशनी पर ध्यान लगा रहे थे और उनके मन से एक प्राणी उत्पन्न हुआ, उनका नाम था विबोंदक। और जैसे ये प्राणी उत्पन्न हुआ, ये विबोंदक ये तुरंत चला गया मध्य प्रदेश, जहां आज के समय है मध्य प्रदेश में के घने जंगलों में, है ना, वहीं पर चंबल फॉरेस्ट है जहां सारे पहले आतंकवादी और ये सब वहीं छुपा करते थे। तो ऐसे घने जंगलों में विबोंदक चले गए ध्यान लगाने के लिए, और उन्होंने गहरी तपस्या की और उनका एकमात्र लक्ष्य था आत्म साक्षात्कार। उनको खुद ही नहीं पता था कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, वहां जाके वो तपस्या में लीन थे। परंतु जब भी तपस्या में कोई लीन होता है तो एक व्यक्ति को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो कौन है, इंद्र को। क्यों, उसको भय होता है कि मेरा पद ना छिन जाए। इंद्र के एक सेक्रेटरी है जो सब जितने भी पृथ्वी पे लोग अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं सबका लिस्ट है, और कोई भी ज्यादा तपस्या करता है अगर उसको डर है कि ये मेरी पोस्ट हासिल कर सकता है तो तुरंत कुछ ना कुछ बाधा वो उत्पन्न करता है। तो इनका भी नाम उस लिस्ट में आया और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि इनकी तपस्या के बारे में बता। तो उन्होंने कहा कि इनकी तपस्या अभूतपूर्व है, इस समय इनके पास इतना तपोबल है कि इनको कुछ भी हासिल करने के लिए कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं, मात्र उनकी इच्छा से, अगर उनके मन में इच्छा आ गई वो चीज स्वयं उनको प्राप्त हो जाएगी। और अगर उनको हल्का सा भी क्रोध आ गया तो ये पूरी की पूरी सृष्टि जल के भस्म हो जाएगी। ये उनका तपोबल है। तो इंद्र तो बहुत भयभीत हो गए। तो उन्होंने, और उनका सबसे बड़ा प्लान क्या होता है, किसी ना किसी अप्सरा को भेजते हैं, है ना। किसी भी साधक के आध्यात्मिक पथ पे दो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, एक वेल्थ से और एक ऑपोजिट सेक्स से। तो इंद्र हमेशा इनको यूज करते हैं, अप्सरा को। परंतु ये इतनी गहरी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र लोक की किसी भी अप्सरा को उन्होंने क्वालिफाइड नहीं समझा इनको विमोहित करने के लिए। उसके लिए वो गए ब्रह्म लोक पे, और ब्रह्मलोक पे और इंद्रलोक में टाइम डिफरेंस है, तो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। अगर कोई ज्यादा समय तक ब्रह्मलोक पे रहेगा और वापस आएगा, वो टाइम गॉन। तो तुरंत गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे सबसे अच्छी अप्सरा दीजिए, और ब्रह्मा जी ने उनको एक अप्सरा दी जिनका नाम था हर्ष, हर्ष। और जब इंद्र हर्ष को लेकर ब्रह्मलोक से वापिस आ रहे थे तो रास्ते में ही उनको पता लग गया था कि इनका चरित्र इतना सेंटली है, इतने साधुत्व है और इतना कोमल है, परम सत्य पे हमेशा ध्यान लगाते हैं। तो इन्हें डर था अगर मैं इनको भेजूंगा तो ऐसा ना हो कि दोनों ही तपस्या करके आत्म साक्षात्कार में आगे हों। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो उनकी उससे सहायता लेना चाहते थे। तो तुरंत उनके पैरों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि आपको मेरी सहायता करनी होगी, कि कृपया जाके आप इनके पास जाइए और इनकी तपस्या भंग कीजिए। तो वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ब्रह्मलोक में थी, और वो जानती थी कि ये विबोधक की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, इनके कोई इच्छा नहीं है इंद्र पदवी प्राप्त करने की। और उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी आप उनसे कंफर्मेशन लेके आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा आपकी सेवा में और आपने मेरे को ये मिशन दिया है तो मैं इसको जरूर अकम्प्लिश करूंगी। तो वो जाती है वहां पर और बैठ के ध्यान करती है, और जब वो गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम आ रहे होते हैं तो ये अलग अलग श्लोकों का उच्चारण करते हैं। और इनकी कमजोरी थी दो चीज, मेडिटेशन और श्लोका रेसिटेशन, है ना। हर साधक की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। जो साधक को लगता है स्ट्रेंथ है वो कई बार वीकनेस भी बन जाती है। हर एक का कुछ ना कुछ वीक स्पॉट होता है और अलग अलग टेक्निक से फॉल डाउन भी हो सकता है। तो जब उन्होंने श्लोकों का उच्चारण करना प्रारंभ किया तो विमोदक इतने मुक्त हो गए कि तीनों लोक में इतना क्लियर प्रोनंसिएशन और ऐसे श्लोक का उच्चारण उन्होंने कहीं नहीं सुना था। तो वो एक बार की और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कौन कर रहा है, और बस उनको हर्षा को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के उनकी ओर देखा वो तुरंत उनके पैरों में पड़ गए कि मैंने ये श्लोकों का उच्चारण किया है पुत्र प्राप्ति के लिए और मुझे आपसे ही पुत्र चाहिए, मेरे को इस सृष्टि में किसी और से पुत्र नहीं चाहिए, कृपया करके आप मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी इस कामना को पूरा नहीं करेंगे तो मैं यहीं तपस्या देते देते अपना शरीर छोड़ दूंगी और आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का फल आपको होगा। इस प्रकार से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो विम्बोधक को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा मतलब इरिटेशन हुआ, गुस्सा आता तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाता। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तुम्हें इस संसार में किसी से भी पुत्र लेना है, मैं उसको निर्देश दूंगा तुमसे पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर तुम्हें ब्रह्मा जी से भी पुत्र चाहिए तो मैं ब्रह्मा जी को निवेदन करूंगा, तो मेरे पीछे क्यों हो। और तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को सिर्फ आपसे ही पुत्र चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, तो उन्होंने अपने जो शक्ति था अपने वीर्य निकाल के वहां पर उनको दे दिया चिंत शक्ति, और चले गए वापस ध्यान लगाने के लिए कि आप इससे पुत्र उत्पत्ति कर लीजिएगा। तो जब ये कह के चले गए तो उनको पता चल गया इनकी सही में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, तो उनका मिशन तो अकम्प्लिश हो गया जो इंद्र ने जिनको भेजा था। परंतु अब एक प्रॉब्लम थी कि उनका वीर्य इतना खतरनाक था कि पूरा का पूरा सृष्टि, खतरनाक तो नहीं, इतना उसमें प्रगाढ़ शक्तिशाली था, पूरा का पूरा सृष्टि जलने लग गए। और अब उन्हीं को कुछ करना था क्योंकि उनकी वजह से ही वो वीर्य आया था। तो हर्षा ने क्या किया, वहां पर एक हिरण घूम रहा था, दिव्य हिरण था, बहुत सुंदर। तो उन्होंने, वो ब्रह्मलोक से थी, अपनी शक्तियों से उन्होंने वो वीर्य उस हिरण के गर्भ में डाल दिया और चले गए। और क्योंकि वो इतना शक्तिशाली वीर्य था तो तुरंत ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र विशेष पुत्र था। उसके सींग थे हिरण जैसे और रूप था मानव जैसा, इसलिए उनका नाम था ऋष्यशृंग। जिनके ऐसा शिशु जिनके हिरण है, जिनके सींग है हिरण जैसे। तो अब ये जो हिरण था, हिरणी थी, ये चली गई, उनके आश्रम में पहुंची, और उनको आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे क्रंदन करने लग गई। तो ये बहुत हुए कि अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है कि एक अभी एक स्त्री ने ऐसा किया और अब एक एक हिरण आके इस प्रकार से बोल रहा। तो वो हिरण उनको लेके गई कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो जब वो वहां गई और उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने देखा ये तो मेरा पुत्र है, अगर कोई इसकी केयर नहीं कर रहा तो मैं इसकी केयर करूंगा। और उसको वो आश्रम ले आए और आश्रम लाके उन्होंने दूध दिया, और वहीं पे उन्होंने सभी उपनिषद वेद सभी प्रकार के दर्शन उन्होंने उनको सिखाना प्रारंभ किया। और वो इतने मासूम थे कि कुछ भी अपने पिता की परमिशन के बिना नहीं करते थे, यहां तक कि उन्हें अपने दांत भी साफ करने होते थे उसके लिए वो पिताजी की परमिशन लेते थे। जहां जहां पिता जाते थे उनकी उंगली पकड़ के साथ साथ जाते थे। तो इस प्रकार से, और उस आसपास पूरे इलाके में एक भी स्त्री नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऋष्यशृंग ये अगर आपका पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें तो ये संभव है। तो उन्होंने कहा कि अब ये प्राप्त कैसे होगा, कहाँ पे है। फिर उन्होंने एक अलग घटना बताई। उन्होंने बताया कि अंग देश में महाराज दशरथ के एक मित्र था जिसका नाम था रोमपाद। रोमपाद मतलब जिसके पैर पे बाल हो। अब इनके साथ क्या था, इनके पुत्र थे और इनकी कोई पुत्री नहीं थी और इनको पुत्री चाहिए थी। देखिए भौतिक संसार में हर जगह ऐसा है, जिसके पास पुत्री है उसको पुत्र चाहिए, जिसके पास पुत्र है उसको पुत्री चाहिए, जिसके पास कोई संतान नहीं है उसको संतान चाहिए, जिसके पास संतान हो जाए तो उसे परेशान होकर उनको स्कूल में डालना चाहते हैं, घर में बहुत हो गया। तो हर जगह भौतिक संसार में हर व्यक्ति असंतुष्ट है। तो ये गए महाराज दशरथ के पास और उन्होंने कहा कि आपकी एक पुत्री है और आप पुत्र चाहते हो तो आप ये पुत्री मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, सहमत हो गए, शांति को दे दिया। अब शांति को जब जैसे ही वो गए लेके राज्य में, अगले दिन से बारिश का सीजन शुरू होना था परंतु कोई बारिश नहीं हुई और सभी लोग कहने लगे कि शांति की वजह से। तो उन्होंने पता लगाया कि राजा ने एक यज्ञ में एक ब्राह्मण को दान देने में कुछ त्रुटि की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको हीरे दूंगा, परंतु जब वो हीरे दे रहा था, बैग में डाल रहा था, तो एक बहुत कीमती हीरा आ गया। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्या करेगा इस कीमती हीरे का। उन्होंने अपने पास रख लिया और उससे बड़ा साइज में बड़ा हीरा बट मूल्य में कम डाल के दे दिया। और ब्राह्मण ने जैसे ही बैग लिया उसको समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, ये ब्राह्मण शक्ति होती थी। तो उन्होंने उसको कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, कोई ब्राह्मण यहाँ नहीं रहेगा। उन्होंने आपस में ब्राह्मणों ने सबने यूनियन बना लिया और उन्होंने सारी जगह छोड़ दी। और जब यज्ञ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी। तो वो किसी ना किसी प्रकार से अलग अलग प्रांत से ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ करवाता था, अपना किंगडम मैनेज कर रहा था, परंतु कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था और इस बार बारिश नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि कैसे ब्राह्मण आएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो अब आएंगे नहीं क्योंकि वो मेरे से नाराज होके गए हैं। तो उन्होंने उनके सलाहकार ने कहा अगर आप ऋष्यशृंग को अपने प्रांत में ले आए तब ब्राह्मण आ सकते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तब परंतु उनको पता चला कि ऋष्यशृंग कौन है, विम्बोधक के पुत्र। आएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप वैश्यों की सहायता लीजिए। तो पूरे प्रांत में घोषणा कर दी, सभी प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया गया। तो सबने सोचा कि कोई किसी प्रकार का नृत्य संगीत कोई ऐसा कार्यक्रम होगा, परंतु जब उनको मिशन बताया गया ऋष्यशृंग को अपने प्रांत में लाना है, सबने हाथ खड़े कर दिए, असंभव। सब कोई जानता था उनके बारे में, कौन पंगा लेगा विम्बोधक से, और सबने मना कर दिया। परंतु एक वैश्य थी, उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, मेरी हत्या होगी, मैं ही मरूंगी, परंतु अगर मैं उसको ले आती तो पूरा का पूरा प्रांत बच सकता है। तो वह तैयार हो गई और उन्होंने एक विशेष प्रकार की बहुत बड़ी बोट की संरक्षण, बहुत बड़ी बोट तैयार की, कई किलोमीटर्स बाय कई किलोमीटर से, और उसको पूरा एक जैसे आइलैंड होता है इस प्रकार से बनाया गया, छोटे छोटे पहाड़, नदियां, आश्रम, और पूरे हर जगह से वृक्ष फूल पत्तियों से ढक दिया। और उसके बाद उस बोट की, उस नाव की विशेषता क्या थी, उसमें उसमें कोई मेल मेंबर नहीं था, सारी की सारी स्त्रियां थी ऋषि गणियों के रूप में, और कोई पशु भी थे, सिर्फ मादा पशु थे, कोई भी पुरुष नहीं था। और इसको वो लेते लेते कहाँ गए, जहां पर उनका आश्रम था, और देवताओं और वहां पर जो उनके पिता थे, एक ऋषि को एक हाथी ने पकड़ लिया था और सहायता के लिए चिल्ला रहा था, तो ये गए वहां पर बचाने के लिए और अपने पुत्र को निर्देश देके गए कि 3 बार यज्ञ जरूर करना है, चाहे तुम आश्रम की सफाई मत करना क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, परंतु 3 बार दिन में यज्ञ जरूर करना है, ये कह के चले गए। और पीछे से फिर ये जो इनकी पूरी पार्टी थी ये पहुंची उनके आश्रम, और इससे पहले ऋषि श्रृंगा ने किसी भी स्त्री के दर्शन ही नहीं किए थे, और इन्होंने वहां जाके अलग अलग श्लोक बोलना शुरू किया। और पहले उन्होंने देखा तो उनको लगा ये कहां से, कौन से क्रिएचर है, क्योंकि जब भी वेदों का वर्णन करते थे उनके पिता, जब भी स्त्री का सेक्शन आता था उसको स्किप कर देते थे, उनके बारे में वर्णन नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था कौन है। तो जब वहां पर गए और उन्होंने अलग अलग प्रकार से कहा कि हम इस लोक से आए हैं, और उनको उनका आलिंगन किया, उनको छुआ, उनका नाम बोला, तो उनको समझ नहीं आया उनके शरीर में क्यों रोमांच हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जो काम का बीज था उनके हृदय में पुरोहित हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे एक ऐसा द्वीप है, आप हमारे आश्रम में आइए, वहां पर यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पिताजी ने मेरे को ये निर्देश दिया है। तो उन्होंने कहा, उनमें से एक महिला ने कहा कि ये तो मैं भी कर लूंगी, मेरे को भी आता, वो वहीं पर बैठ गई और तुरंत यज्ञ शुरू कर दिया, और इस प्रकार से उनको विमोहित करके अपने पास ले गए, और फिर वो नाव में बिठा के उनको एंगेज करते करते अपने वहां। और जैसे ही वहां राजा को पता चला कि वो आने वाले, वो पूरी पार्टी के साथ रेडी थे, और जैसे ही ऋषि श्रृंगा ने देखा कि यहाँ पे तो और इतने सारे लोग हैं और इतनी भीड़ है, सब स्वागत हो रहा है, तो उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है, परंतु जैसे उन्होंने नाव से एक कदम उनके प्रांत में रखा तुरंत बारिश शुरू हो गई और सभी लोग उनके प्रार्थना करने लगे कि आप यहाँ पर रहिए। और उन्होंने कहा कि किंग ने कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कीजिए, उनको पता ही नहीं था क्या विवाह क्या बेटी, तो उनको पूरा एजुकेट किया गया वहां पे, और उन्होंने उनको फिर उसका विवाह स्वीकार किया। अब ये तो हो गया, अब मेजर पार्ट क्या था, हा? जब उनके पिता विम्बोधक वहां पर आए वापस आश्रम में और देखा कि ये कन्या वहां पे यज्ञ कर रही है, तुरंत उसके बाल पकड़े और निकाले कि मैं 6,000 साल से इस यज्ञ अग्नि को मैंने, इसमें मैं यज्ञ कर रहा हूं, इसको इतना शुद्ध रखा हुआ, तुमने आके इसको दूषित कर दिया, ये क्या है और कहाँ है मेरा पुत्र। तो उन्होंने उनको पूरा सच्चा सच्चा सब बता दिया, और वो उसी समय उन्हें लगा कि उनके तो अभी बारिश हुई है, मैं देखता हूं उनको कैसे बारिश मिलती है, और उनको श्राप देने लगे वहीं पे। तो उन्होंने उनके पैर पे पड़ गए, उन्होंने कहा अगर आपको श्राप देना है तो कम से कम उन राजा के सामने दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनके प्रांत में गए, और वहां पे राजा ने पहले से तैयारी कर रखी थी, अलग अलग कश्यप मुनि के चित्र, अलग अलग ब्राह्मण जो उनका गुणगान कर रहे हो, और वहां पे गए और उन्होंने कहा कहां है राजा, और राजा आते उनके पैरों में प्रणाम किया और कहा कि मैंने आपके पुत्र को अपने यहां का राजा घोषित कर दिया। तब इन्होंने सोचा अगर मैं इसको श्राप देता हूं, और यहां का राजा है, राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की रक्षा करना, अगर मैं इसे श्राप देता हूं तो सारा जिम्मा किस पे जाएगा, मेरे पुत्र पे, कि इनकी रक्षा नहीं कर पाया। तो उन्होंने उनको श्राप नहीं दिया, तो परंतु उन्होंने कहा है मेरा पुत्र, बुलाओ। और जब उसके पुत्र को बुलाया गया, उसको तुरंत निर्देश दिया, एक पुत्र के बाद वापस आश्रम में आ जाना, ये कह के चले गए। तो ये वशिष्ठ मुनि किनको बता रहे हैं, दशरथ को। तो दशरथ और ये रोमपाद मित्र थे, तो अब दशरथ गए रोमपाद के पास पूरी 7 अक्षुणी सेना लेकर, अब रोमपाल ने देखा महाराज दशरथ आ रहे हैं इतनी बड़ी सेना लेकर, उनको लगा अब कौन सा युद्ध की तैयारी हो गई, अचानक से कैसा युद्ध। तो वो श्वेत झंडा लेके आ गए कि आपकी इतनी सेना मेरे राज्य में इतनी जगह ही नहीं है कि अंदर आ सके, उनकी सीमा पर ही। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी युद्ध के लिए नहीं आया हूं, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए कि ये ऋषि श्रृंगा से मुझे निवेदन करना है कि ये मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। उन्होंने कहा देखो इनके पिता ने पहले ही इनको निर्देश दिया है कि एक पुत्र होते ही वापस आना, इनकी पत्नी गर्भवती है, पुत्र होने वाला है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता अब मैंने कोई चाल चली तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एक बार मैं खुद मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो वहां पे गए, उनके बिल्कुल चरणों में पड़ गए कि आपको ये यज्ञ करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अश्वमेध यज्ञ की अग्नि में जल के खुद ही भस्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने कैलकुलेट किया डिलीवरी को अभी 28 डेज बचे थे और ये यज्ञ और आना जाना ट्रेवल मिला के 26 डेज में पूरा किया जा सकता था। तो वो मान गए, तो वो लेके उनको गए, ऋषि श्रृंगा को लेके महाराज दशरथ गए अपने अयोध्या में, और जहां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था उसी अग्नि से साथ में एक और अग्नि प्रज्वलित की गई ये पुत्र प्राप्ति के लिए जो उन्होंने यज्ञ किया। और जैसे ही पूर्ण आहुति डाली तो जो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं उस अग्नि से प्रकट हुए, 3 मील बड़े थे और उन्होंने वो खीर लेके उस अग्नि से प्रकट हुए, परंतु वो खीर का प्याला इतना बड़ा था ये देख के महाराज दशरथ बहुत चिंतित हो गए, अगर इतनी खीर किसी को खानी पड़े उसकी ऐसी मृत्यु हो जाएगी तो क्या किया जाए। तो इनकी सहायता ली गई, तो उन्होंने ऋषि श्रृंगा ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा कौन कौन मनुष्य खा सकता है इतना बड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो पुरुष प्रकट होने वाला है उसके ऑपुलेंस इतना बड़ा है कि इससे कम में आएगा ही नहीं। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो समझ गए स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट लार्जर देन द लार्जेस्ट, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक प्याला मुझे दीजिए, जैसे ही उनके ऋषि श्रृंगा के हाथ में प्याला आया तुरंत छोटा हो गया, और उन्होंने कहा कि ये आप अपनी पत्नियों को दीजिएगा, और ये कह के वो तुरंत चले गए। और उन्होंने आधा हिस्सा किसको दिया, कौशल्या को, बाकी का जो आधा आधा हिस्सा था दिया सुमित्रा और कैकेयी को, परंतु जब कैकेयी को दिया फिर भी कुछ बच गया, फिर उन्होंने वो दिया सुमित्रा को, और फिर कैसे कौशल्य से प्रकट हुए भगवान राम, उसके बाद सुमित्रा से प्रकट हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी से प्रकट हुए भरत महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, और फिर वहां पे उनका वर्णन किया पूरा उनका किस प्रकार से उनके इतना सुंदर रूप थे, और लक्ष्मण और राम हमेशा साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न हमेशा साथ रहते थे। बताते लक्ष्मण और राम की जोड़ी इतनी थी, राम कुछ भी नहीं खाते थे लक्ष्मण जब तक वहां पे उपस्थित ना हो, लक्ष्मण कुछ नहीं खाते थे जब तक राम ना हो, जहां जहां राम जाते थे लक्ष्मण पीछे जाते थे। और इस प्रकार से उनका महाराज दशरथ को ये पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसके बाद भगवान राम की अनेक बाल लीलाएं नहीं सुनेंगे, कृष्ण की तो बहुत सारी अनेक लीलाएं हैं, अगर आप पूरी रामायण पढ़ेंगे और इस साथ जो इन कांड है इसमें से मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन किसका है, कैसे भगवान राम को वनवास भेजा गया, कैसे मां माता सीता का अपहरण हुआ, कैसे उनको खोजा गया, युद्ध किया गया, वापस लाया गया, है यहां तक कि वाल्मीकि जी एक श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो रामायण है वास्तव में भगवान राम की कथा नहीं है, किसकी कथा है, माता सीता की, माता सीता की ये ग्लोरीज है। हम देखेंगे सबसे पहले भगवान राम का जो मिले अपने पुत्रों से कहां पे मिले, वो तब मिले जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ, और भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे घोड़े के ऊपर लिखा था, घोड़े पे क्या नोट लिख के भेजा था, अगर कोई वीर है तो इसको रोके। तो पूरे संसार में वो घोड़ा जा रहा था और घोड़े देख के हर कोई समझ गया था कि ये भगवान राम का घोड़ा है। और जब वो घूमते घूमते कहां आया, वाल्मीकि जी के आश्रम में, और जब लव कुश ने देखा तो उन्होंने देखा इस संसार में इतना घमंडी जीव कौन है जो ऐसी इतनी कठोर भाषा लिख रहा है, तो उन्होंने घोड़े को रोक लिया। तो बाकी उसने कहा कि किस लिए? आप जानते हो किसका घोड़ा है? भगवान राम का। तो भगवान राम भागे भागे आए, तब वो नहीं जानते थे कि ये मेरे पुत्र हैं। और वहां पे उन्होंने तो उन्होंने पूछा कि तुम जानते हो कि भगवान राम कौन है, इस प्रकार से उन्होंने पूछा। और तब उन्होंने कहा हम जानते हैं, और उन्होंने चार श्लोकों का उच्चारण किया कि कैसे, जिसमें विवरण होता है। और इन चार श्लोक जिसमें माता सीता और भगवान राम इनका जो आपस में संबंध है, कैसे भगवान राम की महिमा माता सीता से है, इसका वर्णन किया। और इन चार श्लोकों का वर्णन का क्या परिणाम था? भगवान राम वहां बेहोश हो गए। और भगवान राम को अंदर से, क्योंकि माता सीता का परित्याग कर दिया, उस समय वो यज्ञ कर रहे थे माता सीता की मूर्ति रख के, जैसे ही उन्होंने ये श्लोक सुने, माता सीता की महिमा सुनी, वो ये सुन के वो बिल्कुल बेहोश हो गए। तो ये जो पहला कांड है उसके बिल्कुल आखिरी में ये तीन चार श्लोक आते हैं। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो मुख्य मुख्य अभी तो हमने सिर्फ एक बाल लीला पे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन किया, बाल कांड के भगवान राम का प्राकट्य का। इसमें आगे बहुत सी आगे बाल कांड में लीलाएं हैं, अगर सबका डिटेल में करें तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा। तो बहुत ब्रीफली टच करते हुए चलेंगे। जब भगवान राम प्रकट हुए तो जब उन वशिष्ठ मुनि के पास उनको गया, भेजा गया उनके गुरुकुल में सीखने के लिए, तो वहां पे दशरथ महाराज देख रहे थे कि कैसे उनको वो धनुर्विद्या सिखाते हैं। तो जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने देखा कि महाराज दशरथ यहाँ पर हैं, तो उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे पूरा ट्रेडिशन है कि एक राजा देखता है कि उसके पुत्र कैसे पहली बार धनुष को पकड़ते हैं और कैसे तीर चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं है कि कोई पुत्र खीर खाने से उत्पन्न हुआ हो, आपके बच्चे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन होगा। तो फिर उन्होंने महाराज दशरथ को भेजा, और जैसे ही महाराज दशरथ गए तो वो तुरंत उन्होंने उनको प्रणाम किया। एक्चुअल में वो इसलिए उनको भेजना चाहते थे, उन्होंने कहा कि आपका हर अलग अलग रूप में अवतार होता है, मैं जानता हूँ परम पुरुषोत्तम भगवान है और अपने हर अवतार में किसी को गुरु के रूप में धारण करते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए मेरे को ये सेवा दी गई है, तो मेरे से सेवा में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसके बाद वो उनको धनुर्विद्या देते हैं। और ऐसे एक लीला अलग से आती है कि जैसे वो बाल अवस्था में, तो एक महिला जा रही थी और उनके उन्होंने एक नोज रिंग पहना हुआ था बहुत बड़ा, तो लक्ष्मण को देख के बहुत हंसी आ गई, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नोज रिंग। तो उन्होंने तुरंत एक, और समय उनके गुरु वहां उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत तीर लिया और उस महिला के उस नोज रिंग पे मारा, और वो उस तीर का ऐसा प्रभाव था, नोज रिंग छोटा होता गया होता गया होता गया, और होते होते इतना छोटा हो गया उनकी सांस ही नहीं आ रही, उनकी सांस फूलने लग गई, सिर्फ एक नाक से वो सांस ले आने फंस गए। तो उन्होंने कहा अरे ये तो ज्यादा छोटा हो गया, फिर भगवान राम ने बांट लिया, मारा उसको, थोड़ा बड़ा किया। अब वो बिल्कुल विस्मित हो गई, ये क्या हो रहा है ना। तो उन्होंने देखा ये दो बालक हैं कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक और बांट लिया और उनकी नोज रिंग को नोज से निकाल के हवा में ऊपर कर दिया। तो जब ऐसा हुआ फिर लक्ष्मण ने तुरंत बाण लेके उसको वापस उनके नाक में फिट कर दिया। ये उनका पराक्रम था। और आगे वर्णन आता है जब वो 16 वर्ष के थे तब विश्वामित्र मुनि वहां पर आते हैं। अब विश्वामित्र मुनि का एक अलग इतिहास है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उनको हल्का सा भी गुस्सा आ जाए वो शाप देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, बिल्कुल नहीं घबराते। हर कोई पूरे संसार में जानता है अगर इनके शाप से हर कोई बचना चाहता है, विश्वामित्र मुनि के शाप से। तो अब महाराज दशरथ को जब पता चला कि विश्वामित्र मुनि यहाँ आया, तो उन्हें बड़ा भय हुआ। तो क्या, तो उन्होंने आते ही तुरंत पूछा कि महाराज दशरथ कहाँ हैं, बुलाएं। अब दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि से कंसल्ट कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने तुरंत अपने पहले मैसेंजर को भेजा कि विश्वामित्र मुनि 2 मिनट में हाजिर हो जाए, महाराज दशरथ 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे, तब तक आप, ये पूरा साम्राज्य आपका है, कृपया आप इससे क्रोध मत होइएगा कि वो 2 मिनट में आ रहे हैं, तुरंत नहीं आए। तो वो चल के आ रहे हैं, तो उसने जाके सूचना दी। तो वशिष्ठ मुनि का सबसे पहले आप जाके उनका पूरा आदर सत्कार कीजिए, आप देखिए क्या उनका जो भी इच्छा हो उसको पूरा कीजिए। तो वहां पर गए और आ जाते उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनका पूरा आदर सत्कार किया और उनका कि पूरा का पूरा साम्राज्य आपको मैं समर्पित करता हूँ, आपका है। तो उन्होंने कहा मेरे को तुम्हारा कोई राज्य वाज्य नहीं चाहिए। तो उनका आपको जो भी चाहिए मैं आपको पूरा करूंगा उन्होंने, और अंदर से डर रहे थे कि कहीं कहीं ये राम लक्ष्मण को ना मांग ले। और हुआ ऐसे, विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मुझे आपके पुत्र चाहिए राम लक्ष्मण। जैसे ये बात दशरथ जी ने सुने तुरंत मूर्छित हो गए, इतना प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति थी उनके अपने पुत्र से कि तुरंत मूर्छित हो गए। और फिर एक घंटे बाद जब वो होश में आए, देखा सामने विश्वामित्र मुनि खड़े हैं क्रुद्ध अवस्था में कि तुम्हारे अगर तुम ये सुन के बेहोश हो यानी तुम्हारी नियत नहीं है देने की, और अगर नियत नहीं है तो तुमने क्यों वादा किया था, मेरे को तुम्हारा कोई नहीं चाहिए और मैं जा रहा हूं। और वशिष्ठ मुनि भागते हुए आए, उन्होंने दशरथ महाराज को समझाया कि इनको ऐसे मत कीजिए, शांत कीजिए। और फिर विश्वामित्र ने मुनि ने कहा कि मेरे को लंबे समय तक नहीं चाहिए, मेरा जो यज्ञ कर रहा हूं उसमें दो असुर हैं जो मेरा बार बार उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय थे, चाहते तो खुद ही इनका बल इनका वध कर देते थे, परंतु अब वो आए हैं एक क्षत्रिय से सहायता लेने, क्योंकि ब्राह्मण है वो अपना तपोबल खोना नहीं चाहते थे उनको मारने में। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने समझाया अगर आप राम लक्ष्मण को इनके साथ भेजोगे तो ये इनको बहुत शिक्षाएं भी देंगे, अलग अलग मंत्र भी देंगे अलग अलग, और ये जितने भी सेलेस्टियल वेपन्स हैं देविक क्या कहेंगे वेपन्स को, हथियार तो बड़ा वैसे चीप सा शब्द है, वेपन समझते ना, सेलेस्टियल वेपन्स डेमी गॉड्स के देवी देवताओं के वेपन सबका ज्ञान इनके पास है, ये सब आपके पुत्रों को प्रकट करेंगे। तो ये बात सुनकर दशरथ जी थोड़े शांत हुए और उन्होंने वो स्वीकार किया। तो जब अब विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेके जा रहे थे तो राम लक्ष्मण के लिए एक वेकेशन टाइम था, जो रेगुलर एजुकेशन चल रही थी, अलग अलग विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं। और जहां जहां से जाते थे विश्वामित्र मुनि वहां आके इतिहास बताते, जहां पे रुकते थे जिस नदी में स्नान करते थे, अलग अलग प्रांत के पूरे इतिहास सुनते थे। पहले कांड आप देखेंगे अलग अलग बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार से गंगा प्रकट हुई, उसका पूरा इतिहास है। उसके बाद उससे पहले तो जहां पे भी रात में रुके उन्होंने उनको मंत्र दिए, बल और महाबल अलग अलग उन्होंने उनको मंत्र दिए कि इससे आपकी शक्ति तुरंत बहुत बढ़ जाएगी, जितनी भी प्रकार की थकावट है वो सब दूर हो जाएगी। तो उन्होंने वो लिया, वहां पे विश्राम किया। अगली सुबह जब वो चले तो अपने आश्रम में पहुंचे, सिद्ध आश्रम उनके नाम था, और तब उन्होंने उनको तैनात किया और तुरंत जाके यज्ञ शुरू किया। और वहां पे कौन से असुर आए, क्या नाम था उनका, नहीं ताड़का बाद में, उसका बाद में होगा, सुबाहु और मारीच। तो इनके आते ही एक अलग, असुर जब भी प्रवेश करते हैं कुछ ना कुछ हलचल होती है, तो उन्होंने आंखों की दृष्टि से उनको पॉइंट कर दिया कि वो आ रहे हैं। अब रामायण के भी पूरे इंडिया में अलग अलग वर्जन्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे कि कैसे उन्होंने उनको मारा। एक वर्जन में आता है कि जब ऐसे देखा तो राम ने पूछा लक्ष्मण से आप क्या करोगे, तो राम लक्ष्मण ने तीन तीर हवा में मारे, तीन चार मील जो ऊपर गए, जैसे ही ऊपर गए उससे लाखों तीर निकले और सबने एक चक्र बना लिया ऊपर। तो जब ये सुबाहु और मारीच जब आ रहे थे तो उनको दिखाई नहीं दिया कहाँ पे अग्नि है, तो सुबाहु ने मारीच को डांटा कि मैं तीन घंटे से अपना मलमूत्र रोक के रखा हूं, पर तुमने कहा था कि वशिष्ठ के सॉरी विश्वामित्र के यज्ञ कुंड पर ही डालना, तो कहाँ है वो। तो जैसे ही थोड़ा सा पास गया मारीच, हल्का उसको उसको टच हुआ वो तीर, उससे कई योजन दूर जाके गिरा, है ना, उसको अभी मरना नहीं था, उसका समय कुछ बचा था, और उसका उन्होंने वध कर दिया सुबाहु का। और जैसे ये हुआ तो सारे ऋषिगण वहां पे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा अब हमारे लिए कोई और सेवा है, तो उन्होंने कहा कि जनकपुर में कैसे वहां मिथिला राज में एक विशेष यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में भगवान शिव का धनुष है। मैं चाहता हूं कि और वहां पे स्वयंवर हो रहा है, मैं तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ वहां पे चलिए। सारे ऋषिगण वहीं जा रहे थे वहां पे जो यज्ञ हो रहा था, और भगवान राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। अब पूरा उसका कुछ ही पार्ट हुआ है रास्ते में, कैसे अहिल्या का उद्धार हुआ, कैसे वो उनका पूरा हिस्ट्री बताते हैं गंगा का और अलग अलग प्रांतों का, वहां जाके फिर वो पूरा डिस्क्रिप्शन है मिथिला का, नाम मिथिला कैसे पड़ा, कैसे शिव धनुष उन राजा के पास कैसे पहुंचा, और वो शिव धनुष कितना भारी था कि 300 लोग उनको उठाने की आवश्यकता पड़ती थी हल्का सा मूव करने के लिए भी, हल्का सा 300 लोग हल्का सा शिव मूव कर दें तब उनको उसके बाद आधा घंटा विश्राम करना होता था हल्का सा और आगे करने के लिए, ये इतना उसके अंदर बल था। ये बिल्कुल अलग घटना है, कैसे अभी उसकी डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, कैसे वो शिव धनुष उनके पास पहुंचा। शिव जी और भगवान विष्णु में एक बार युद्ध हुआ था नारद मुनि और इंद्र की कॉन्स्पिरेसी से, कुछ एंटरटेनमेंट चाहते थे कौन बड़ा है। इंद्र कह रहे थे शिव जी बड़े हैं, नारद मुनि कहते थे विष्णु बड़े हैं, तो उन्होंने कहा आपस में युद्ध करा लेते हैं। तो फिर शिव जी के लिए विश्वकर्मा ने धनुष बनाया, और जब उन्होंने ब्रह्मा जी को भेजा विष्णु को इनवाइट करने के लिए, उन्होंने कहा कि आप अपना आध्यात्मिक जगत से धनुष नहीं लाएंगे क्योंकि बैटल इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, तो विश्वकर्मा ने उनका वो बनाया, धनुष बनाया। फिर उनमें युद्ध होता है, कैसे शिव जी पराजित होते हैं, फिर विष्णु अपना धनुष एक उसमें देते हैं ऋचिक मुनि को, और ये देते हैं अपना क्या, किनको शिव धनुष प्राप्त होता है, विराट, हाँ नहीं जनक, एक्चुअली इनकी परंपरा में जितने नाम है सबके नाम जनक है, इनके पिता उनके पिता उनके पिता, जनक वन जनक टू जनक, सबके नाम जनक ही है। जो सबसे पहले जिनको प्राप्त हुआ था उनका उत्पत्ति के अलग वो है, पूरा अलग पास टाइम है। खैर जब जनक महाराज, जय श्री कृष्ण बलराम राधिकारमन की, जो जनक महाराज के पास पुत्र नहीं था तो ब्राह्मणों ने उनको निर्देश दिए थे कि आप क्या यज्ञ करो, अपने उनके पास एक स्पेशल रीजन था वहां पे हल चलाओ, जहां जहां आपका हल अटकेगा जब तब तब रुक के आप सभी ब्राह्मणों को सोना दान में देना, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपको पुत्र पुत्री प्राप्त होगी। तो वहां पे वो से माता सीता उत्पन्न होती हैं, उनको प्राप्त होती हैं, और इनके भाई के 3 पुत्रियां थी, ये चौथी, और इनके खुद की एक पुत्री, 4 पुत्रियां। जब भी खेलती थी तो उनके पास एक छड़ी होती थी, आगे से हुक होता था ना फ्लावर उतारने के लिए वृक्ष से। तो एक बार माता सीता फ्लावर उतार रही थी, तो वृक्ष जैसे उतारती वृक्ष ऊपर हो जाता, जैसे और जंप करती और ऊपर हो जाता। तो माता सीता को लगा मेरे को पता है इससे फ्लावर कैसे उतारना है, तुरंत गई जहां पे शिव धनुष था, उस बॉक्स को खोला, शिव धनुष को निकाला और उससे कर, और जितने सैनिकों ने देखा, आधे सैनिक तो देख के बेहोश हो गए, ये क्या हो रहा है हमारे आंखों के सामने। जो थोड़े बहुत होश में थे वो भागते हुए जनक महाराज के पास गए कि माता सीता ने वो धनुष उठा लिया है, उससे खेल रही है। तो जनक महाराज ने कहा ये क्या हो गया, तुम अपना चिकित्सक को बुलाया गया जो सूचना देने आया था कि ठीक है नहीं। इतने में और नौकर चाकर आने लगे कि सीता माता ने धनुष उठा लिया है। तो जब ये ऐसी सूचना मिली दशरथ महाराज भागते हुए गए, तब तक सीता माता वो धनुष वापस अपनी जगह रख रही थी और बिल्कुल मासूम की तरह खड़ी हो गई, परंतु दशरथ महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण पुत्री नहीं है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों से कंसल्ट किया कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पिता है नारायण, तो कौन अब आपके लिए तो सबसे बड़ी समस्या हो गई, आप इन पुत्री का विवाह कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा स्वयंवर रखा कि जो इस धनुष को उठा सकेगा उनका मैं उससे विवाह करूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा ये तो असंभव है, पूरे जीवन आपकी बेटी बिना अविवाहित रह जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर ये लक्ष्मी है तो नारायण खुद आएंगे इनको लेने के लिए। और फिर विश्वामित्रा के साथ यहां पे गए, जैसे वो प्रवेश किया उस सभा में तो राम लक्ष्मण थे, उस समय बिल्कुल अंधेरा छा गया। उस समय रावण आया था और रावण से और अपने 2 असुरों के साथ आया था, और रावण ने कहा कि तुम सब क्या जीव हो, एक इसको नहीं उठा पाए, मैंने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया था भगवान शिव उनके परिकर के साथ, तो क्या मैं इस धनुष को नहीं उठा पाऊंगा। तो और सबको लगा कि रावण सही में उठा लेगा, और वो जैसे ही गया उसने उठा भी लिया, परंतु भगवान शिव ने सोचा मैंने ये धनुष यहाँ पे दिया है भगवान राम के लिए, ये रावण आके क्या प्लान में स्पॉइल कर रहा है, तो तुरंत धनुष में प्रवेश कर गए और वो इतना भारी हो गया कि उसका पूरा हाथ दब गया उसके नीचे। और जब तक वो पूरा थक हार नहीं गया, क्षमा नहीं मांगी, तब तक भगवान शिव उसमें से शक्ति गई नहीं, तो फिर वो वापस गया। फिर भगवान राम ने, उनका इतना पराक्रम था, सिर्फ अपने बाएं हाथ से धनुष के मिडल पार्ट को उठाया, सीधा रखा, नीचे अपना लेफ्ट फुट से नीचे धनुष को पकड़ा और पूरा का पूरा उसको बांध दिया, और जैसे ही उसको पीछे किया वो धनुष टूट गया। और जैसे ही वो धनुष टूटा उससे इतनी जोर की गर्जना हुई कि वहां पे जितने लोग थे सब गिर गए, सिर्फ तीन लोगों को छोड़ के, जनक महाराज, दशरथ महाराज और विश्वामित्र मुनि, इनको छोड़ के प्रत्येक जितने योद्धा बड़े बड़े शत्रु सब बिल्कुल गिर गए, इतने उनका इतना। और जैसे ये हुआ तो उनका विवाह डिसाइड हुआ, तुरंत संदेश भेजा गया अयोध्या में, जनक महाराज को जब पता चला बहुत प्रसन्न हुए, अगले ही दिन पूरे के पूरे बारात लेके सेना के साथ वहां पर गए, और वहां पे फिर पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे विवाह हुआ। सबसे पहले उनका समावर्तन संस्कार किया गया, है ना, अलग अलग संस्कार होते हैं, सबसे पहले विवाह, फिर जात गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसावान, शोषंती होम, जात कर्म, नामकरण, विद्या आरंभ, अन्नप्रशन, अलग अलग, और फिर जब ग्रेजुएट हो जाता है तो समावर्तन। तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, विवाह से पहले समावर्तन संस्कार किया गया, और फिर बिल्कुल बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार से उनका विवाह किया गया। जनक महाराज ने भगवान राम का और सीता का हाथ दिया भगवान राम में, उर्मिला जी का हाथ दिया लक्ष्मण के हाथ में, मंडवी का हाथ दिया भरत के हाथ में, और फिर श्रुता कीर्ति का हाथ दिया शत्रुघ्न के हाथ में। और जैसे ही माता सीता प्राप्त हुई भगवान राम को, बताया कि माता सीता इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल लवलीनेस एंड वर्च्यू, राम फेल्ट अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। और माता सीता को भी बहुत आनंद हुआ भगवान राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करके। और इस प्रकार से जब विवाह संस्कार संपन्न हो गया तो वो वापस जा रहे थे, तो वापस जाते समय उन्होंने कुछ इंडिकेशन देखे, ऊपर से जंगली पक्षी रथ के ऊपर से होते हुए आगे गए, तो ये बहुत अशुभ माना गया, और बाएं से राइट क्रॉस करते हुए हिरण गए तो ये बहुत शुभ माना गया। तो दशरथ महाराज चिंतित हो गए, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, परंतु ये हिरण की गति बताती है, पूरा विज्ञान होता था, अभी कोई कहते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब अंधविश्वास होता है, परंतु एक वैदिक विज्ञान है जिसमें साइंस देख के आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो कुछ क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से आप कुछ वो शंका टल जाएगी। तभी उन्होंने देखा पूरा का पूरा तूफान पीछे से आ रहा है, और इतने मतलब वहां पे कोहरा काला मच गया कि सिर्फ दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि, राम और लक्ष्मण सिर्फ ये बचे थे, बाकी सब को कुछ नजर नहीं आ रहा था। और तभी उनके सामने कौन प्रकट हुए, परशुराम। और परशुराम को देख के सब भयभीत हो गए कि परशुराम ने 21 बार पूरी क्षत्रिय सेना का संहार कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने व्रत कर लिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि वो और नहीं युद्ध करेंगे और मंदर पर्वत पर जाके तपस्या करेंगे। तो उन्होंने, दशरथ महाराज बहुत चिंतित हो गए कि अब आप क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भगवान शिव हैं उन्होंने, किसी ने उनका धनुष तोड़ा है, है ना, तो मेरे को डर है फिर से जो क्षत्रिय है वो बहुत घमंडी बनने वाले हैं, तो कौन है वो। तो उन्होंने इस प्रकार से टेस्ट किया। इस कन्वर्सेशन में भी बहुत डिटेल आती है कि भगवान राम ने उनको अलग अलग बातों कह के बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया कि वास्तव में ये कौन है। तब उन्होंने भगवान विष्णु का धनुष उनको दिया युद्ध करने के लिए, और जैसे ही उन्होंने, भगवान राम ने उनसे धनुष स्वीकार किया, साथ ही साथ उनकी सारी शक्ति वापस ले ले। और उन्होंने उनको कहा था कि इस धनुष को पूरा खींच के दिखाओ। तो भगवान राम ने वो जो धनुष था, विष्णु का जो धनुष है, पूरा का पूरा अपने कान तक पीछे खींच लिया। तो समझ गए कि ये और कोई नहीं भगवान, ये मेरे प्रिय, ये भगवान विष्णु स्वयं है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने तुरंत शरणागत हुए। तो उन्होंने कहा, बट अगर मैंने ये धनुष यहां तक खींच लिया है तो कहीं ना कहीं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मैं कहां छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस छोड़ने से जो तुम स्वर्ग प्राप्त करने वाले थे, मैं उसको नाश कर दूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने जो उनका जितना भी तपोबल था, जिससे वो स्वर्ग जा रहे थे, उस सब का नाश किया। और परशुराम को कहा कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, उससे क्योंकि वो शक्तावेश अवतार थे, शक्ति ली और उनको वापस भेजा तपस्या करने के लिए। और फिर वो महाराज दशरथ के साथ आगे गए। और इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बालकंड इस यहां पे कंक्लूड होता है कि जैसे वो घर पहुंचे तो केकई से, केकई प्रांत से युद्ध जीत आए हुए थे, जो केकई के पुत्र थे। तो वो कौन हुए भरत और शत्रुघ्न के मामा? तो उन्होंने कहा कि केकई, उन्होंने कहा कि आप आके हमारे साथ समय बिताएं। तो फिर भरत और शत्रुघ्न उनके साथ कहां चल जाते हैं? केकई प्रांत। और वहां पर राम और लक्ष्मण बहुत ही सुंदरता से राज्य संभालते हैं, पिता को असिस्ट करते हैं। और ये आखिरी लाइन है जहां पे वो होता है कि कैसे माता सीता और भगवान राम का एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से शरणागत हुए, एक दूसरे के सौंदर्य और महान चरित्र, महान गुणों से बहुत आकर्षित हुए। सत्यता में माता सीता जो सौंदर्य है उनका स्वयं स्वरूपमान थी, सौभाग्य की देवी थी, स्वयं लक्ष्मी थी। अपने मन में माता सीता भगवान राम के हृदय के अंतरकरण में जो भी चल रहा होता था उसको समझ जाते थे। माता सीता और भगवान राम को कुछ एक्सप्रेस नहीं करना होता था, आई लव यू, डू दिस डू दैट, कुछ नहीं। उनका आपस का रिलेशनशिप, संबंध इतना प्रगाढ़ और इतना गहरा था कि भगवान राम के हृदय के सबसे अंतरकरण में जो भी इच्छा हो वो माता सीता उनके देख के समझ जाती थी। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए अब देखेंगे कल जब अयोध्या कांड डिस्कस होगा, जब पूरा एपिसोड आता है कि कई माता ये वरदान मांगती है, वर मांगती है, और महाराज दशरथ फिर बुलाते हैं, तो भगवान राम को पता चल जाता है कि किस लिए होकर। तो वो माता सीता और भगवान राम की जो वार्तालाप होती है सिर्फ आंखों में होती है, बात में नहीं होती। बात तो बाद में आके होती है, आंखों में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे विद इन हर माइंड सीता कुड विविडली रीड एवरीथिंग इन द इनर मोस्ट कोर ऑफ राम्स हार्ट। और अपने पति भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए वो इतनी दृढ़ थी, तो वो भगवान राम के हृदय को उन्होंने अपने वश में कर लिया था। कैसे? बाय वुमेनली जेंटलनेस एंड चेस्टिटी, अपने चेस्टिटी से और अपने गुणों से उन्होंने भगवान राम के हृदय को पूर्ण रूप से आकर्षित कर लिया था। तो ये है बालकांड, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो भगवान राम का चरित्र बहुत ही महान है, और रामायण किसी भी संस्कृति कल्चर को आप पता है कैसे चेंज कर सकते हैं? एक कल्चर किस चीज से डिफाइन होता है, संस्कृति किस चीज से डिफाइन होती है? अगर कोई इसका करेक्ट आंसर, वेरी स्पेशल प्राइज। कैरेक्टर नहीं, वैल्यूज से नहीं, ये सब है ठीक है, बट एक कल्चर डिफाइन होता है स्टोरीज से। उस कल्चर में जैसे नरेटिव्स, जैसे स्टोरीज होती हैं, वैसे वैल्यूज डिसाइड होते हैं, वैसे कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे सब। तो ये जो रामायण है ये आदि काव्य है। जितने भी हम आज के समय स्टोरी, मूवी, ड्रामा जो भी हो, सब कुछ यहीं से आया है। आप किसी में देख लो, एक होगा हीरो, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलेन होगा। कहां से आया? आदि कवि भगवान रामायण से आया। परंतु इन स्टोरीज को अगर हम पढ़ेंगे, आदर्श चरित्र को जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे और जितना हम स्प्रेड करेंगे, तो उससे वो वैल्यूज डिटरमाइन होती है, उससे वो संस्कृति आती है ना। तो आने वाले राम नवमी के उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा भगवान राम का गुणगान करें और उनसे कृपा की याचना करें कि जिन्होंने सही वैल्यूज जो अपने जीवन से दिखाई हैं, उनको हम अपने जीवन में उतार सकें और हम आगे हम पे आश्रय जितने लोग हैं उनको प्रदान कर सके। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। कल अयोध्या कांड शुरू करो। हरे कृष्णा।